आयशा राधिका के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी ताकि वो कियारा को सॉरी कह सके। उसने कियारा को सॉरी तो नहीं कहा, लेकिन कुछ वक्त बिताने के बाद वो कियारा के रूम से बाहर आ गई थी। आयशा ने राधिका तो घर जाने के लिए कहा और खुद वहीं पर रुक गई थी। उसके कदम इस वक्त वसुधा के कमरे की तरफ पड़ रहे थे। आयशा के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने खुद से कहा, अब मैं देखती हूँ कि अभिमन्यु राजवंश कब तक तुम्हारी हेल्प करता है। अपनी दादी के चलते वो मजबूर है ना, तो देखना उसी दादी का यूज करके कैसे मैं अभिमन्यु को तुमसे अलग करती हूँ। आयशा वसुधा के कमरे के दरवाजे के आगे गई तो उसने देखा कि वो किताब पढ़ने में बिजी थी। उसने अपना चश्मा लगा रखा था। अचानक किसी के कदमों की आहट सुनकर वसुधा ने उसकी तरफ देखा और हल्के गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा अंदर गई और उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं आपको कुछ जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ दादी, शायद मेरे अलावा आपको इस बारे में कोई और नहीं बता सकता। आयशा को लगा कि वो वसुधा को सब बता देगी, लेकिन वसुधा ने बेपरवाही से उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुमसे बात करने का मन है। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो। वसुधा आयशा को देखकर गुस्सा कर रही थी। इससे बॉडीगार्ड समझ गए थे कि वो उसके आने से खुश नहीं है। तुरंत दो बॉडीगार्ड आगे आए और वो आयशा को पकड़कर बाहर निकालने लगे। अभिमन्यु का भी यही ऑर्डर दिया हुआ था कि दादी की इच्छा के खिलाफ कोई भी उस कमरे में कदम नहीं रखे। गार्ड्स आयशा को बाहर निकालने लगे, तभी वो जोर से चिल्लाकर बोली, बड़ी दादी, इशिका मुसीबत में है। वसुधा वापस अपनी किताब में लग गई थी, लेकिन आयशा की बात सुनते ही उन्होंने तुरंत किताब बंद की और परेशान स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? मेरी बहू को क्या हुआ है? इशिका के लिए बहू शब्द सुनकर आयशा चौंकते हुए बोली, कौन सी बहू की बात कर रही हैं आप? आयशा बाहर जाने के बजाय वहीं पर रुक गई थी। अरे वही इशिका, मेरी बहू, जल्दी बताओ उसे क्या हुआ है, वसुधा ने झट से पूछा। आयशा को लगा कि फिर से अपनी बीमारी के चलते वसुधा सब भूल रही है और इशिका को अपनी बहू समझ रही है। उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें सब बताते हुए बोली, उसने किसी का मर्डर कर दिया है और पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। अभी जमानत के चलते वो बाहर है और हॉस्पिटल में है। हर जगह न्यूज में वही वायरल हो रही है। आपने न्यूज नहीं देखी क्या बड़ी दादी? वसुधा ने आयशा की बात का जवाब नहीं दिया और जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। उसने देखा कि लोग इशिका को काफी भला बुरा कह रहे थे। वो उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर विक्टिम के बेटे को खरीद रही है और साथ ही झूठी बीमारी का बहाना बनाकर उसने जमानत हासिल की है। वसुधा ने एक न्यूज पर क्लिक किया तो प्रिंस न्यूज रिपोर्ट कर रहा था। हालांकि वीडियो के अंदर माहिर और इशिका दोनों के ही चेहरे क्लियर नहीं थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी एक नजर में पहचान सकता था। उस खबर को देखकर वसुधा को झटका सा लगा। उसके बाद जब वो कमेंट पढ़ने लगी तो उसके होश और भी उड़ गए थे। हालांकि अभिमन्यु का नाम कहीं भी निकलकर नहीं आया था, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी अमीर फैमिली से संबंधित हैं। वसुधा जैसे जैसे कमेंट पढ़ रही थी उनके चेहरे का रंग उड़ गया रहा था। ये सब आयशा देख पा रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर कहा, बड़ी दादी, अब इशिका को सब जानने लगे हैं और उसकी इमेज पूरी तरह खराब हो गई है। आपको नहीं लगता कि अब राजवंश फैमिली को उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? इसीलिए तो आयशा वसुधा के पास आई थी ताकि उनका ब्रेन वॉश कर सके। उसके हिसाब से इशिका में इतना घमंड इसी वजह से था क्योंकि वसुधा उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही थी और उनकी वजह से अभिमन्यु भी मजबूर हो गया था। वसुधा ने आयशा की तरफ देखा तो वो आगे बोली, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश इस वक्त हॉस्पिटल में है और इशिका की देखभाल कर रहे हैं। अगर रिपोर्टर्स ने उन्हें वहां देख लिया तो उन्हें यही लगेगा कि इशिका और उनके बीच कोई रिलेशन है। फिर बात सीधे सीधे राजवंश एम्पायर पर आएगी और इसका असर बिजनेस पर भी पड़ेगा। वसुधा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम रिपोर्टर्स को फोटोज वायरल नहीं करने देंगे। वसुधा ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अभिमन्यु को कॉल किया। दूसरी तरफ से अभिमन्यु ने भी कॉल रिसीव कर लिया था। वसुधा ने उसके कॉल रिसीव करते ही जल्दी से कहा, तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? कहीं वहां आसपास कोई रिपोर्टर तो नहीं है ना? आपको इस बारे में कैसे पता? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। फिलहाल हमारी प्राइवेसी पर बात नहीं आनी चाहिए। अपने मैनेजर को बोलो सिक्योरिटी बढ़ाए ताकि कोई भी रिपोर्टर फोटो क्लिक करके वायरल ना कर सके, वसुधा ने सख्ती से कहा। वसुधा की बातें सुनकर आयशा के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। बात जब इज्जत पर आई थी तब वसुधा ने भी राजवंश फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। ये सोचकर उसको खुशी महसूस हो रही थी। आयशा की खुशी चंद पलों की थी क्योंकि वसुधा के अगले शब्द सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वसुधा ने अभिमन्यु को डांटते हुए कहा, किसी भी रिपोर्टर को बहू की फोटो मत लेने देना। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रहती है। कल को मामला सुलझ भी जाएगा, लेकिन अगर उसकी फोटोज वायरल हो गई तो पूरे शहर में लोग उसके बारे में बातें बनाएंगे और ये मुझे कतई गवारा नहीं है। उनकी बातें सुनकर आयशा हैरान रह गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो इशिका की परवाह कर रही थी। इसके बाद वसुधा ने हल्के गुस्से में अभिमन्यु पर चिल्लाकर कहा, और तुम? इतना सब कुछ हो गया और इस बारे में मुझे दूसरों से पता चल रहा है। खबरदार जो मेरी बहू को अकेला छोड़ा है। मैं उससे मिलने नहीं आ सकती हूँ, लेकिन तुम उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे। अपनी सारी मीटिंग्स और काम को एक बार के लिए साइड रखो और उसका ख्याल रखना। आयशा वहाँ खड़ी उनकी बातें हैरानी से सुन रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी गार्ड ने कहा, मैडम आप खुद बाहर जाएंगी या हमें धक्के मारकर निकालना पड़ेगा? आयशा ने कुछ नहीं कहा और बाहर जाने लगी। गार्ड्स भी उसके पीछे जा रहे थे। आयशा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वसुधा का सहारा लेकर अभिमन्यु और ऋषिका को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह नाकामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वसुधा से बात करने के बाद अभिमन्यु अपनी नाक पर उंगली घुमा रहा था। उसने वसुधा से बात कर ली थी, लेकिन उनकी बातें अभिमन्यु के कानों में गूंज रही थी। वसुधा ने कॉल खत्म करने से पहले अभिमन्यु से कहा था, और मेरी बात कान खोलकर सुनो, ऐसे मौकों पर लड़कियों की सहारे की ज्यादा जरूरत होती है। आज तुम मेरी बहू को अकेले नहीं छोड़ोगे, कमरे में सोफे पर सोने की जरूरत नहीं है, उसके साथ बेड पर उसे हक करके सोना, उसे अच्छा लगेगा। अभिमन्यु ने ऋषिका की तरफ देखा, फिर अचानक उसकी नजर बेड पर गई। पूरे कमरे में वो एक ही बेड था जिस पर दो लोग फिट हो सकते थे। वसुधा ने जो कहा था वो सोचकर ही उसके गाल लाल हो रहे थे और दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अभिमन्यु तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। एक ही बेड पर ऋषिका के साथ में हक करके सोते हुए खुद को इमेजिन करके ही उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, और वो ऋषिका के सामने नॉर्मल बिहेव करना चाहता था। अभिमन्यु ने ऋषिका से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। ठीक है, ऋषिका ने जवाब दिया। वो बेड पर आराम कर रही थी। जैसे ही अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचा, उसने ऋषिका की तरफ देखा और उसकी तरफ पलटकर बोला, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, डिनर साथ में करेंगे। ऋषिका उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि यहाँ पर वसुधा नहीं थी जिसके लिए उसे ये दिखावा करना पड़े। वो उसे कहना चाहती थी कि अगर उसके पास ज्यादा काम है तो वो उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन अभिमन्यु की केयर देखकर वो मना नहीं कर पाई और उसने हाँ में सिर हिला दिया।
ऋषिका को लगा अभिमन्यु के जाने के बाद वो बोर हो जाएगी, लेकिन गौतम और नैना कियारा के साथ उससे मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ उसका अच्छा टाइम बीता। वहीं दूसरी तरफ राघव वापस दिल्ली पहुंच चुका था। गौतम मित्तल जब भी ऋषिका को देखते तो उन्हें अपनी मैडम मर्चेंट की याद आ जाती और वो खुद को रोक नहीं पाए। गौतम ने तुरंत राघव को मैसेज करते हुए लिखा, मेरे स्टडी रूम में जाओ, वहाँ लेफ्ट साइड में जो अलमीरा है वहाँ एक एल्बम में मेरी मैडम मर्चेंट के साथ में एक फ़ोटो है, पांचवें या छठे पेज पर होगी, मुझे अभी उसे क्लिक करके भेजो। उस फोटो के पीछे का बैकग्राउंड किसी पार्टी का है। ठीक है, राघव ने जवाब दिया। गौतम ने ये मैसेज उनके फैमिली ग्रुप में भेजा था। मैसेज को देखकर नैना ने उसकी तरफ देखा। उसे गौतम पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वो अभी भी इस बात को साबित करने में लगा था कि राधिका ऋषिका की माँ है। जल्दी राघव ने फोटो ढूंढकर भेज ली थी, लेकिन फोटो धुंधली होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। गौतम निराश हो गए थे तो राघव ने आगे लिखा, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, मैं इस फोटो को फिर से बनवाकर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं उस औरत से पिछले 20 साल से नहीं मिला हूँ, इसलिए मुझे उनका चेहरा याद नहीं है। तुम ऐसा कर दोगे तो सच में एक एहसान की तरह होगा, गौतम ने जवाब दिया। राघव ने फिर से फ़ोटो बनाने के लिए हाँ कह दी थी, इससे गौतम काफ़ी खुश हो गए। शाम के करीब उन्हें वापस जाना था, लेकिन कियारा का वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। कियारा ने जाने से पहले ऋषिका से कहा, रात को डिनर अकेले करना एक अलग ही फीलिंग देता है, यह आपको अकेलेपन का एहसास कराता है। क्या आप श्योर हैं कि आप अकेले डिनर करना चाहती हैं मिस सिंघानिया? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, ऋषिका ने जवाब दिया। वो डिनर अकेले नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे तो अभिमन्यु के आने का इंतज़ार था। ऋषिका का हालचाल पूछने के बाद मित्तल फैमिली वहां से जा चुकी थी। ऋषिका ने टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उन सबके जाते ही बोर्ड बिल्कुल खाली हो गया था और उसे अभिमन्यु की याद आ रही थी। अचानक किसी के कदमों की आहट हुई और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई तो ऋषिका के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। उसने जल्दी से अपने बालों को सही किया, लेकिन दरवाजे पर पृथ्वी आया था। उसने ऋषिका से कहा, सॉरी मिस सिंघानिया, मिस्टर राजवंश एक मीटिंग में अटक गए हैं और वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, उन्होंने आपके लिए डिनर लाने के लिए कहा है। हाँ, ऋषिका ने जवाब दिया, हालांकि ऋषिका को दिल ही दिल में बहुत बुरा लग रहा था। ऋषिका ने अकेले ही डिनर किया और फिर सोने के लिए चली गई। अगले दिन का इन्फ्यूजन अर्ली मॉर्निंग लेने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार थी। सामान न होने की वजह से ऋषिका को पैकिंग भी नहीं करनी पड़ी। वहां से निकलने से पहले ऋषिका ने अपने रूम की खिड़की के बाहर से देखा तो कुछ रिपोर्टर्स अभी भी कैमरे के सामने खड़े थे। उन्हें देखकर ऋषिका ने आइज रोल करके कहा, आयशा का सच साबित करने तक मुझे इनसे बच के रहना पड़ेगा, वैसे भी इन्होंने मेरी इमेज खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऋषिका ने अभिमन्यु के आने का इंतजार नहीं किया और पृथ्वी के जरिए अभिमन्यु के भेजे हुए गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के बाद वो हॉस्पिटल के पिछले गेट से घर के लिए निकल गई थी। ऋषिका ने एक टैक्सी ली और अपने घर पहुंची। टैक्सी से बाहर निकलकर उसने मास्क लगाया और चाबी से दरवाज़ा खोलने वाली ही थी कि तभी कोई अचानक उसके पास से कूदकर बाहर आया। मिस सिंघानिया, तुम तो पूरी तरह ठीक हो चुकी हो, फिर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जमानत तो बीमारी बोलकर हुई थी ना, वो भी शायद कुछ घंटे के लिए थी। वो प्रिंस था, प्रिंस काफ़ी चालाक था, उसे पता था कि ऋषिका हॉस्पिटल से सीधा घर आएगी, इसीलिए वो पहले से वहाँ पर तैयार बैठा था। ऋषिका ने नाराज़गी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? प्रिंस अपना कैमरा चालू करते हुए बोला, आजकल इंटरनेट से कुछ नहीं छुपा हुआ होता, कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा एड्रेस ऑनलाइन रिवील कर दिया, ये मत सोचना कि तुम कानून से बच पाओगी। ऋषिका ने गहरी सांस ली, वो समझ गई थी कि प्रिंस किन अच्छे लोगों की बात कर रहा है। वो जरूर आयशा ही होगी जिसने उसका एड्रेस लीक किया था। प्रिंस ने कैमरा उस पर करते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आप मेरे सवालों के जवाब भी दे सकती हैं। मामला अभी सुलझा नहीं है तो मैं सामने से कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी। उम्मीद है कि आप पुलिस पर यकीन करेंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे, इशिका ने जवाब में कहा। इशिका ने भी दरवाज़ा खोला और अंदर जाने की कोशिश की तो प्रिंस उसके सामने आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। इशिका गुस्से में तेज आवाज में बोली, अपनी लिमिट में रहो प्रिंस, रिपोर्टर्स भी अपनी लिमिट में रहकर रिपोर्टिंग करते हैं। किसी को ये हक नहीं होता कि वो सामने वाले व्यक्ति के साथ बदतमीजी करें। तुम्हें एहसास भी है कि तुम मेरा रास्ता रोककर मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो, मैं पुलिस बुला लूंगी। उसका इतना नॉलेज देखकर प्रिंस हैरान रह गया, वो साइड में हट गया। उसके बाद इशिका ने अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो हैरान रह गई। वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था और सब गड़बड़ लग रहा था।